पेज नंबर 91, नागरी लिपि में लिखी संस्कृत निष्ठ हिंदी ही भारत संघ की एकमात्र भाषा हो सकती है और होकर रहेगी। अंग्रेजी पढ़कर नौकरी के पीछे दौड़ने वालों को इस पर नाक भौं नहीं सिकोड़ना चाहिए, ना हाय तौबा मचानी चाहिए। भारत की फिर से एकता इन थोथी हट धर्मियों से नहीं होने की, वह शोषण के अंत और पूर्ण समाजवाद की स्थापना से ही होगी। हमें उसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। भारतीय संघ की भाषा पर विचार कर लेने के बाद फिर हिंदी भाषा भाषी चार प्रांतों युक्त प्रांत, मध्य प्रांत बिहार, पूर्वी पंजाब की प्रांतीय भाषा का सवाल आता है। मैं कह चुका हूँ कि अंग्रेजों के बनाए भानमती के कुनबे वाले अन्य प्रांतों की भांति इन चारों प्रांतों को भी मातृभाषाओं के अनुसार बांट देना चाहिए। लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर के पंजाबी भाषा भाषी भाका हिंदी भाषा भाषी अम्बाला कमिश्नरी से गठबंधन करके एक प्रांत बनाए रखने का कोई मतलब नहीं। अगर हम इतनी सूझबूझ नहीं रख और इन चारों प्रांतों को आज की सीमाओं के साथ कायम रखना चाहते हैं, तो भी बिहार और मध्य प्रांत में, जहां उर्दू अब तक कचहरियों में घुस नहीं सकी, उसे अब घुसेड़ने का प्रयत्न दुराग्रह मात्र है। युक्त प्रांत और पूर्वी पंजाब में भी उर्दू तभी सरकारी भाषा रह सकती है यदि वह अरबी नहीं नागरी लिपि में लिखी जाए। इसके लिए हिंदी लिपि द्वारा हमें उर्दू की शिक्षा का भी सुभीत करना पड़ेगा। हाँ, अल्पसंख्यक जातियों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। यदि कोई समुदाय उर्दू भाषा अरबी लिपि के द्वारा ही पढ़ना चाहता हो, तो उसके लिए पूरी सुविधा देनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया दिल्ली जैसी संस्थाएँ यदि उर्दू को अपनी शिक्षा का माध्यम रखना चाहें, तो उसके लिए काम में सहायता देनी चाहिए। उनकी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और साइंस की डिग्रियों को सरकारी नौकरी के लिए भी अनिवार्य होने से दफ्तरी काम में उन्हें कोई अड़चन न होगी। भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात यहीं तक चल सकती है और यह पर्याप्त है। यदि उज्बेक प्रजातंत्र में बसने वाले लोग अपनी भाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए वहाँ प्रबंध हैं। लेकिन यदि उज्बेक भाषा न सीखने की किसी ताजिक ने कसम खा ली, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए उज्बेकिस्तान छोड़कर तजाकिस्तान जाना पड़ेगा। साथियों, मुझे अफसोस है कि भाषा के सवाल पर विवेचना करते मैंने इतना समय आपका ले लिया, लेकिन आज वह भारी प्रश्न है, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। संक्षेप में कहने पर बहुत से भ्रम उत्पन्न हो सकते थे, इसलिए विस्तार से कहना पड़ा। यह प्रश्न अभी हमें विचाराधीन रखना है। मैंने तो एक दृष्टिकोण भर विचार करने के लिए आपके सामने रखा है। थोड़ा सा समय प्रगतिवाद के साहित्यिक स्वरूप पर विचार करने के लिए भी लेना चाहता हूँ। प्रगतिवाद कोई कल्ट या संकीर्ण संप्रदाय नहीं है। प्रगतिवाद का काम है प्रगति के रुंधे रास्ते को खोलना, उनके पथ को प्रशस्त करना। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं, परतंत्रता का शत्रु है। प्रगति जिसके रोम रोम में भीग गई है, प्रगति ही जिसकी प्रकृति बन गई है, वह स्वयं अपनी सीमाओं का निर्धारण कर सकता है। उसकी सीमा अगर कोई है, तो यही कि लेखक और कलाकार की कृतियां प्रतिगामी शक्तियों की सहायक न बने, उनके शोषण और उत्पीड़न का हथियार न बने। प्रगतिवाद कला की अवहेलना नहीं कर सकता, वह तो कला और उच्च साहित्य के निर्माण में बाधक रूढ़ियों को हटाकर सुविधा प्रदान करता है। वह रूढ़िवाद और कूप मंडूकता दोनों का विरोधी है। हमारे लिए देश और काल दोनों के प्रति विशाल दृष्टि रखना सबसे आवश्यक है। ध्यान रखना होगा कि हम वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, बाण, सरह, स्वयंभू, कबीर, विद्यापति, तुलसी, हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी हैं। योग्य संतान वह है जो पिता के वैभव को और बढ़ाता है। रवींद्र जी ने ऐसा करके हमारे सामने बड़ा उदाहरण रखा। पंत और निराला ने दिखलाया कि कि गंगा की छाड़न को फिर मुक्त प्रवाह में कैसे परिणत किया जा सकता है। हमें अपने साहित्य को आधुनिक युग और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार समृद्ध बनाना है। उच्च कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध ही के द्वारा नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, साइंस संबंधी प्रचुर साहित्य का निर्माण करके। आज साइंस का युग है। साइंस ही हमारे समाज के दैविक और भौतिक तापों को मिटा सकती है। उसी के पास रत्न गर्भा वसुंधरा के उदर में छिपी निधि को खोलने की कुंजी है। साइंस सिर्फ विशेषज्ञों तक ही सीमित रहने वाला ज्ञान नहीं, उसे जन साधारण तक जन भाषा में पहुंचाना है। हमें ऐसी सस्ती पुस्तक माला निकालनी चाहिए जिससे साइंस के भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी पुस्तकें जनता तक पहुंचाई जा सकें। इसी प्रकार विश्व साहित्य की अनमोल निधियों को भी अपनी भाषा में लाना चाहिए। तभी हम विश्व के कलाकारों में बैठकर अपने अश्वघोष और कालिदास का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथियों, अंत में लेखकों की आज की स्थिति पर दो शब्द कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। लेखक आज हमारे सबसे अधिक शोषित कर्म कर रहे हैं। उनके परिश्रम को कौड़ी के मोल खरीदा जा रहा है। उनका करतल भिक्षा तरुतल वास किसको नहीं विदित है? जीवन भर घुट घुट कर परिश्रम करना, बीमारी और बुढ़ापे में असहाय हो भूखे मरना, यही मानो उनके भाग्य में लिखा हुआ है। इससे छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, लेखकों का संगठन। मैं तो कहूँगा लेखकों को अपना सहयोगी प्रकाशन स्थापित करना चाहिए। उचित मजूरी और लेखन स्वातंत्र पाना तभी संभव है। अभी कानून भी लेखकों के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता। वस्तुतः वह हमारे हित के लिए बनाया भी नहीं गया है। अपने संगठित प्रयत्न से हम अपने अनुकूल कानून बनवा सकते हैं। जनता का युग आरंभ हो गया है। प्रगतिशील लेखक जनकल्याणी के हामी हैं। हमारा भविष्य उज्ज्वल है। आइए एक कतारबद्ध और संगठित हो राष्ट्र के नवनिर्माण में दिल खोलकर लग जाएं।